भक्तवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्तु गुरवे गौरचन्द्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः यं प्राप्तजं तमनुते दैपायनो विरहता पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयम् वै वास्मि तमयि वास्मि इति विज्ञाय राधे तन्मय माम्। लीला प्रातःकालीन लीला प्रातःकालीन लीला और भगवान और भजन की दृष्टि से निशांत भजन श्रद्धा पूर्वान्न भजन नर्थ निवृत्ति और तृतीय होता है निष्ठा पूर्वक भजन। निष्ठापूर्वक भजन यानी भक्ति दो प्रकार की अनिष्ठिता और निष्ठिता। जिस भजन में निष्ठा नहीं है भजन करते हैं माइक एक नया फंड जिस भजन में नर्तक प्रचूर लाते हैं बुद्धि स्थिर नहीं है कोई निश्चयात्मक निर्णय नहीं ले सके हैं जो कैसे भजन करें। इच्छा होती है तो कभी ना करते हैं इच्छा होती है तो नहीं करते हैं कभी माला ले लिया कभी नहीं लिया कभी प्रवचन में जाते हैं तो प्रवचन के आयोजन में अधिक लगते हैं सुनने में नहीं जैसे माइक इत्यादि का देखते हैं लोग आ रहे हैं उनको बैठा रहे हैं और सब चीजों के क्या बोल रहे हैं इसको कैसे ग्रहण करें कि दिल में रुचि नहीं है। घर में ना करके भजन करूं घर छोड़ करके करूं जानते हैं ये भजन में अर्थ बहुत बाधक है तो भी अर्थ की लिप्सा नहीं छोड़ पाते जानते हैं अर्थ और भगवान के भक्ति के लिए बाधक जो कामनाएं हैं ये सब बाधक है भक्ति में अन्याभिलाष किंतु इतना चित्त हृदय दुर्बल है प्रतिष्ठा की आशा नहीं करनी चाहिए किंतु फिर भी प्रतिष्ठा की आशा ही नहीं प्रतिष्ठा की आशा तो रहती ही है यदि कोई नहीं करता है तो हम खुद ही प्रशंसा करा लेते हैं। किस तरह से तीर्णा कवि सुनी करोड़ों की शाही सुनी अमानी मान गए ये नहीं आए सोच रहे हैं हमारे जीवन का निर्वाह कैसे हो भगवान पर अभी विश्वास नहीं आया शरणागति पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन और प्रकृति की जो बात कहा था वो सब नहीं है। जन भजन में पढ़ते हैं बैठते हैं तभी जितने प्रकार के अनर्थ वही सब गजगज करने लगते हैं। क्या होगा, कैसे रहेंगे, गुरु जी के बाद में क्या होगा, कैसे हमारा निर्वाह होगा। भजन के लिए भजन में उन्नति हो इसके लिए नहीं होगा। एकांत चित्त से समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर चित्त को समाहित करके भजन करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी विषयों से युद्ध होता है जिसको संग्रह क्या कहते हैं, विषय संग्रह, विषयों के साथ में संग्राम होता है। कैसा संग्राम, जानते हैं कि विषय भगवान का भजन का बाधक है और तभी विषयों की भोग करने की लालसा बनी रहती है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनसे हम युद्ध करते हैं, कभी कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं। भगवत भजन में आलस्य और निद्रा ये प्रधान बाधक ये भी है। कभी कभी हम जितने की चेष्टा करते हैं हार जाते हैं, तो सच्चा साधक होगा तब, और यदि सच्चा साधक नहीं है तो इनसे युद्ध की बात हो तो जीवन भर ऐसा ही अनिश्चितता भक्ति में रहेगा। आज उनको जीतना चाहता है उनके साथ में जीत होगा। इसलिए पहले कहते हैं यदि निष्ठापूर्वक भजन करना है तो इस श्लोक को याद करो। कौन सा, महाप्रभु जी राय रामानंद से कहते हैं या स्वरूप दास, स्वरूप और राय रामानंद दोनों से कहते हैं कि रूपे लैले ना प्रेम उपजय तार लखन सुना स्वरूप रामायण, दोनों को कह रहे हैं। किस प्रकार नाम लेने से, ऐसे तैसे नाम लेने से जिसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसा जो करते हैं उन्हें बोलते हैं, ऐसा जो हम नाम करते हैं नहीं बोलते। ऐसा जो हम नाम करते हैं हाँ यही पर गा बोलिए, अरे यहाँ पर गड़बड़ी है भाई, अरे वहाँ नहीं यहाँ है गड़बड़ी, यहाँ पर
तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन तिष्ठनीय। यदि तुम शुद्ध नाम करना चाहते हो तो इस प्रक्रिया को अपनाओ, तृणादपि सुनिचेना, तुम्हारा दस्त पर
जे रूप लैले नाम प्रेम उपजय तार लखन लोक सुनत स्वरूप राम राय। उत्तम हैया अपना के माने तृणाधाम। देखो यदि प्रेम चाहते हो नाम में तो उत्तम हैया अपना के माने तृणाधाम। सब विषयों में जो उत्तम व्यक्ति है, सब प्रकार से गुणों में, भजन में, साधन में भी, फिर भी अपने को तीर्ण से भी अधिक दीनहीन समझे। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष, दो प्रकार से सहिष्णु, जैसे वृक्ष दूसरों का परोपकार करता है और अपने लिए कभी भी स्वार्थ की कोई चीज नहीं सोचता, अपना पेड़ पौधा मूल बीज पत्ता डाल फल फूल सब दूसरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं। और अपने ऊपर में कष्ट पड़ने पर किसी से भी कोई सहायता नहीं लेता, यदि कोई उसका अपकार भी करता है उसके नीचे जाए तो छाया फल फूल सब कुछ लेगा, लठी मारो डंडा या पत्थर तो फल दे देगा, यदि भजन करना है तो ऐसा करो, आपका आपका अपकार भी कर रहा है, अपना अपकार भी कोई कर रहा हो तो उसका उपकार भी सोचो, इस प्रकार से भजन करो। वृक्ष जनों काजिले किछु ना बोला, जैसे कोई आपका अपकार रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, कुछ ना बोला, कुछ प्रतिकार नहीं कर, सुखाइया पहले कारे पानी ना, स्वयं सूख जाएगा भी तभी कुछ नहीं मांगता, सही जी मांगे तय दे, जो जो कुछ मांगता है अपना सर्वस्व वो सब दे देता है, हम लोग नहीं दे पाते हैं। अरे गुरु जी को नहीं दे पाते हैं तो और लोगों की तो बात, बल्कि विश्वासघात भी कभी कभी हम लोग कर देते हैं, बहुत बड़ा भारी विश्वास है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। गुरु वैष्णव का कोई विश्वासघात करके कुछ कर सकता है? वो लोग इसको लेते ही नहीं, संसार में जिस जिससे विश्वासघात कहा जाता है उनका उसमें कुछ, उसको तो वो छोड़ चुके हैं, इसलिए उनका फर्क नहीं पड़ता, किंतु दूसरों को फर्क पड़ेगा, उन लोगों पर जो करते हैं उनका सर्वनाश होता है। गर्भवृष्टि सहे परे आनंद, गर्भवृष्टि इत्यादि सहता है, धूप वर्षा सब कुछ, गर्मी सब समय, और कठोर रूप में भजन करता है और अपने भजन का फल सबको बांट देता है। उत्तम भैया वैष्णव हवे निरंजना, वैष्णव उत्तम होने पर, उत्तम वैष्णव किसको कहते हैं? निंदा विशून्य भजन प्रवीण तत्व ज्ञान से युक्त रसिक, ये वैष्णव तत्व, ये उत्तम होकर कभी निराभिमान है। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं हो पाता, मध्यम अधिकारी में भी उच्च यदि मध्यम अधिकारी होगा तो ऐसा कर सकेगा। जीवे सम्मान दिव्य ज्ञानी कृष्ण अधिष्ठान, समस्त जीवों को सम्मान देगा उचित रूप में, उत्तम वैष्णव को उत्तम, मध्यम को मध्यम वैष्णव, इसलिए ये वैष्णव भी मध्यम कोटि का होना चाहिए। जब तक वैष्णव मध्यम में नहीं आएगा तब तक उसको निष्ठा नहीं आएगी, श्रद्धा में कनिष्ठ रहेगा, और जब वो बढ़ेगा धीरे धीरे भजन करते 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 बसा हो चुका। जब तक अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जन रक्षस की विश्वास को विपरीत करने तथा आत्मनिक्षेप का पण्यो सर्विदास बनाने, भक्ति अनुकूल जहाँ तहाँ स्वीकार, भक्ति के अनुकूल यदि कोई चीज है तो उसे ग्रहण करें, भक्ति के अनुकूल ना हो तो उसका त्याग करें, इसमें खूब दृढ़ रहना चाहिए इस संकल्प के साथ। कोई चीज भी हो हम चाहते हैं और कोई चीज देता है तो उसको ये देखेंगे कि हमारी भक्ति के अनुकूल है कि नहीं, तब तो ग्रहण करेंगे, और भक्ति के प्रतिकूल है तो उसे छोड़। कृष्ण वही रक्षा करता आर के मन, हमारी रक्षा करने वाला कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, कृष्ण से पालन हो रहे परिवेन भाई, कृष्ण ही हमारा पालन करेंगे, एक रक्षा है विपत्तियों से, विरोधी बातों से, ये रक्षा और पालन, पालन पोषण एक दूसरी चीज है, वो है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। कृष्ण हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, वह हमारे रक्षा करता है विपत्तियों इत्यादि से, भक्ति के प्रतिकूल वशों से हमारी रक्षा करें, और वे हमारा पालन करेंगे। कैसे कैसे पालन करेंगे? साधु संग देंगे, यथार्थ गुरु को प्राप्त कराते, नहीं वह साधु बन करके आकर के उससे साधु का संग कराएंगे। उसके अंदर में श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति इत्यादि उसमें, जैसे गोप कुमार के गुरु वे क्या करते, कभी कभी उनके सामने आ जाते और थोड़ी सी उनकी भक्ति पुष्टि होकर के अंतर ध्यान मिल जाए और उनके परामर्श के अनुसार में जो भक्ति के विचार हैं उसको धीरे धीरे पूछते। 10 वर्ष तक मिले ही नहीं, हठात कभी जगन्नाथपुरी में और कभी वृंदावन में, और थोड़ी सी हिंट दिया, देखो कृष्ण नाम कैसे करना चाहिए, ये दीक्षा का मंत्र का इष्ट कौन है, अधिष्ठात्री देवता कौन है, और उसको कैसे भजन करना चाहिए, ये करते करते मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, उनको पानी लाने के लिए गए और तब तक अंतर ध्यान मिले ही, कभी पूरी में मिले, अपने जीवन क्षेत्र के साथ में शिक्षा देते, इसलिए भगवान ऐसे कभी अंतर्ज्ञानी गुरु रूपी सिखाते हैं और कभी मंत्र गुरु के रूप में वो शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से कृष्ण हमारा पालन पोषण भी करते हैं, विपत्तियों से रक्षा भी करते हैं। कैसे विपत्ति से रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं, एक आदमी अत्यंत आसक्त है संसार, सब कुछ उसके प्रतिकूल बना देंगे और जैसे कि उनको शरणागत होकर के उनका भजन करो, सबको धीरे धीरे हटाते जाएंगे और वो चिल्लाएगा समझेगा नहीं, कहेंगे भगवान बड़े निष्ठुर हैं। इस प्रकार से जो संसार नहीं छोड़ना चाहता है और भगवान का भजन करना चाहता है सचमुच और उनकी कृपा है, ऐसी परिस्थिति लाएंगे कि स्त्री पुत्र परिवार सभी उसके विपरीत हो जाए, घर से निकल जाए, ये भी भगवान की करुणा है। निष्कपट धन्य करी जीवन जाप, आमी अमार जत किछु कृष्ण निवेदन, ये आत्मनिवेदन सचमुच में झूठ नहीं, सचमुच में आत्मनिवेदन करें। कैसे करेगा, साधारण आदमी के लिए असंभव, इसलिए हमारा जो कुछ है धन जन पुत्र परिवार मानस देह गे जो कुछ वो वहां पदे पड़ी न, ऐसा सचमुच में हो तब अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, जो उनकी इच्छा भी उस संसार में हम कर सकें, तब तो भजन भाई सब सोचो, क्या सोचो, देहाभिमान को त्याग करो, यदि भजन करना चाहता है इस देह में जो आसक्ति है छोड़ो, कैसे छोड़ेंगे, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, कैसे अभिमान जाए। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम परिमाण पेशम कि मूषकम पृक्ष से मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। इदम शरीरम सतसंधि जर्जर, यह शरीर सतसंधि 7 वर्षों तक किसी प्रकार से खींच खांच करके ले जा सकते हैं और इसके बाद में जर्जर हो जाए। पतत्यवश्यं परिमाण पेशल, या परिमाण पेशल अर्थात परिणाम युक्त है, बाल्यकाल युवावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था और अंत में मरणावस्था, ये जरूर परिणाम इसके होंगे ही, अवश्य ही इसका पतन होगा ही। कि औषधम पृच्छसि, क्या औषध पूछ रहा है, रेमूर क्या औषधि पूछ रहा है, दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम, कृष्ण नाम का रसायन, उनकी कथाओं का रसायन पियो, उनके समान परीक्षित महाराज आदि के नाम तुम्हारे सब रोग सदा के लिए दूर हो जाएंगे समूह। तो हम लोग को विश्वास नहीं होता, सतसंधि जर जर तब एक कलेवर पतन हो, एक दिन भस्म कृमि विष्टा हवे सकलेर घृणा हवे तबे यहाते ममता अलवाची ओरे मन सुन मोर ए सत्य वचन ए रोगेर औषधि कृष्णाम निरवधि निरामय कृष्ण रसायन। ये शरीर का अंतिम परिणाम तुम जितना भी इसे बचा करो। जो लोग आलसी होते हैं कोई सेवा नहीं करते, हमने देखा जी एक 70-75 वर्ष का बूढ़ा जरस बूढ़ा और साइकिल रिक्शा से खींच रहा है, दिन भर परिश्रम बेचारा करता है, जैसे तैसे चलता है। और कुछ लोगों को देखा है जो 50 वर्ष की अवस्था में कुछ नहीं करते, शरीर को गाड़ी की तरफ में खींच करके स्वयं भी नहीं ले चलता, तो क्या जरूरत है। जब तक ये शरीर है इसको अच्छी तरह से कस कर इसे सेवा ले लो, इसका काम ले लो, भजन करो, सेवा करो, हरि गुरु वैष्णव, जितना इसको बचा करके रखेगा उतना ही रोग होगा और उतना ही कष्टदायक होगा, जरूर होगा। इसलिए आलस्य प्रमाद मत करो, ये ऑटोमेटिक घड़ी है भाई। इस शरीर को भगवान ने दिया जिस काम के लिए, भजन के लिए और हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, इसको कष्ट करके इससे लगा दो। और जो जितना इसको नहीं लगाता उसको उतना ही रोग होगा, चिंता होगी। यद्यास्म कृमि कीड़े, अरे की हलो बोलो ना, सकलेर घृणा हवे इस रोग का एकमात्र महौषधि क्या है, राम बाण है, कृष्ण नाम, कृष्ण की कथाएं। नाति प्रसिद्धति तथोपचितो वचारे बारादित सुरताई हृदय बद्ध काम सर्वभूत दया क्या असत लभ्य लभ्यक लभ्यको नाना जने अवित सुहृत बहुपचार आदि अर्पण। पूजी कामी देवगण, बहुत से लोग देवताओं की बहुत प्रकार के उपचार से पूजा करते हैं, प्रसन्नता लभे उसे तुम्हारी प्रसन्नता नहीं होती। सर्वभूते दया करे, समस्त भूतों के प्रति, प्राणी के प्रति दया करते हुए भजे अखिल आत्मा है और समस्त अखिल आत्माओं के जो आत्मा है भगवान का जो भजन करता है उस पर भगवान की कृपा होती है। प्राणियों को दया करते हुए, प्राणियों की दया क्या, उनको भगवान के तरफ उन्मुख कर देना, ये सबसे बड़ी दया है। भोजन करा भी दया है, वस्त्र देना, रोगियों को औषध देना है, किंतु ये ठीक दया नहीं, इसे कभी अमंद भी हो सकता है, इसे बुरा भी हो सकता है, किंतु भगवान नाम या भगवान के भजन में किसी की प्रवृत्ति कर दो तो उससे अशेष कल्याण होता है। इसलिए लोगों को अपने भजन करो, दूसरों से भी प्रवृत्ति लगा करके भगवान का भजन कराओ, इससे बढ़कर के जगत में कोई दया नहीं। एक आदमी लाख रुपया किसी को दान कर दिया और एक आदमी ने एक व्यक्ति को भगवान में मोड़ दिया, ये अधिक दयालु। लाख रुपया दिया कि दो दिन के बाद में वो शत्रु हो जाएगा, किंतु ये नहीं, ये जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाएगा। श्रेण मन सतो भगवतो गुणकीर्तनानि देहेन जस्य पुलकोद्गम रोमराज नोत्पद्यते नैनो विमलं मुमालं धिकतस्य जीवितं महो पुरुषात्मस्य। मुकुंद माला स्तोत्र में ये कहा गया है, श्रीमन सतो भगवतो, साधुओं के मुख से कृष्ण नाम का की महिमा और कृष्ण नाम सुन करके भी जिनका हृदय पुलकित नहीं होता, आंखों से विमल निर्मल आंसुओं की धारा नहीं गिर रही, वो भी अनर्गल अनर्ग में लगातार नहीं बह रहे, उसके जीवित रहने से क्या लाभ। ये कौन कहेगा? मध्यम अधिकारी कहेगा, जो भजन अब समझ रहा है, जो भजन किसको, भगवान का नाम करने पर भी, भगवान की कथा सुनने पर भी, वो भी साधुओं के साथ में, साधुओं के संग में सुन करके भी चित्त पुलकित नहीं होता, हृदय द्रवित नहीं होता, आंखों से लगातार निरंतर अश्रु प्रवाहित नहीं होता, तो समझो जी इसको धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, क्या भजन कर रहा। कृष्ण तदीय पाद पंकर पंकज पंजरंत अद्वैव में विशतु मांस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपबात पित्तई कंठा वरदन विदौ भजतम पुतस्त बिठा दिन जाय मोर मजी आशंसा। साधक भक्त यह समझे और चिंतन करे हरि नाम करते समय में या और समय में, हाय है हमारा जीवन बेकार का बर्बाद होता चला जाए। इस संसार में मैं दिन सवेरे से शाम तक बैल और गधों की तरह मैं परिश्रम कर रहा, किंतु किसके लिए परिश्रम कर रहा हूं ये तनिक भी नहीं समझ पाता कि किसके लिए। जिसके लिए कर रहा हूं वही घर से निकालेगा। जैसे गाड़ी में बैलों को जोश देते हैं मुसलमान लोग और ऊपर से मारते हैं, वो गिर जाता है, दांत बाहर करता है, हाँफता है, तो अभी उसको पूंछ बड़ोड़ करके ऊपर से पीट करके उठा करके ले चलते। ऐसे हम लोग भी संसार के लिए कर रहे हैं, किंतु किसके लिए? कार लागी कोई है तो नाग रुची लग रहा, किसके लिए कर रहे हैं? अरे इतना यदि भगवान के लिए भजन करता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। जैसे बूढ़ा बैल करते करते थक जाता है, वैसे अपने संसार गृहस्थी में आदमी बूढ़ी बूढ़ा थक जाते हैं और समय घर में कोई नहीं पूछता है, ऐसे बूढ़े बल की भांति हम लोगों का जीवन हो जाता है, किंतु अभी से सोच नहीं पाते किस लिए कर रहे हैं। दिन जाए वृथा काजे निशा निद्रा बसे, और कब मृत्यु आ जाएगी नहीं जानते। मरण होने पर श्मशान में ये शरीर फेंक दिया जाएगा, कुत्ते लड़ेंगे ये मेरा है ये मेरा है, गिद्ध लड़ेंगे, और इस प्रकार से इसको आग में फंसा कर देंगे। उस शरीर के लिए इतना करते हो, भगवान का भजन कुछ करो। अद्वैत तुम्हार पाद पंकज हो प्रभु, मैं जीवन में नहीं समझा, मृत्यु काल आसन्न है, अवृद्ध हो रहा हूं, ये प्राण प्रयाण काले कफ वित्त पाद, ये तीनों पकड़ लेंगे, कफ उसमें उच्चारण हरिनाम भी नहीं होगा, घर कुछ भी नहीं उच्चरित होगा, घर घर करने लगेगा, सांस रुक जाएगा, याद करो यदि कभी किसी को मरते हुए देखा है, करीबे के कंठ रोग अप्रफुल्ल चित्त तखन जिवाय ना सुर बेतौना, उसमें हे प्रभु आपका नाम नहीं उच्चरित होगा, समय छाड़ी ले किसे हवि सिद्ध का। इसलिए बचपन में ही युवावस्था में ही इसी समय ही जब भी बोध हो तभी से भगवान का भजन करते चलो। संसार का और कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन यदि हो गया तो सब कुछ ठीक है, और भगवान का भजन नहीं हुआ और सब कुछ ठीक है तभी बेठीक है। हम लोगों की दशा कैसी है समझो, कहीं से चार बैल या भैंस जो बूढ़े हो गए हैं, थरथरियों में प्राण उनके हैं, कसाई लोग उसे खरीद कर और उसको रंग लगा दिया है, कोई मार्क ला सब पर 50-60 हैं, और उनको मथुरा में ले आए, कसाई खाने के सामने रख दिया, और तब उनके सामने थोड़ी सी घास भरी सी डाल दी और उसमें से 5 को ले गए भीतर और उनको काट दिया, फिर 5 को ले जा रहे हैं, और वो जो घास डाल दिया अब उस घास के लिए परस्पर वो जो रहे हैं लड़ रहे हैं। हमारी दशा ठीक है ऐसी समझो, विषयों का घास डाल दिया गया, किसने? जम ने, काल ने, मृत्यु ने, कब मरेंगे कोई ठीक नहीं, उसमें से हमारे बाप को हमारे दादी को, हमारे आजा पर राजा को, हमारे बंधुओं को, पिता को, माता को अब ले चला गया है, अब हमारी पारी है, और विषयों का ये घात डाल दिया गया, और हम इसके लिए जमीन मेरी है, ये रुपया मेरा है, ये तेरा है, ये है, और परस्पर लड़ रहे हैं। यही हमारी बूढ़ों बैलों की जो कसाई खाने में कटने वाले जाने वाले हैं, और वो लड़ते हैं थोड़ी सी घास के लिए, वही दशा हमारी। हम ये नहीं सोचते कि हम कैसे बचे उस मृत्यु से, इस चीज को समझ, जो इन चीजों को समझेगा वो भजन करेगा, नहीं समझेगा भजन नहीं कर सकेगा। ये दुर्दशा होने वाली है, ये साधारण लोगों के लिए कहते हैं जो भजन करना चाहते हैं, तो और लोगों के लिए क्या। इसे हे प्रभु, आप अनुग्रह करके हमारी जीवा पर स्फूर्ति प्राप्त हो, हम आप कुछ नहीं चाहते हैं। ये सब किस लिए? अनर्थ के लिए। इसलिए अनर्थ दूर होकर के भजन में निष्ठा होने पर ऐसे विचार आते हैं, अन्यथा नहीं आएगा। क्रमशः भजन में निष्ठा और अनर्थ जुट जा रहे हैं, जिसके लिए कहा गया है भागवत के प्रथम स्कंध में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवा मैंने क्या? भक्त की सेवा और भागवत श्रीमद भागवत की सेवा। भागवत की सेवा मैंने क्या? श्रवण करके वैसे अपने जीवन को बनाना, जैसे परीक्षित महाराज ने भागवत सुना वैसे सुनेंगे, तब धीरे 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 अनर्थ दूर जाएंगे, और उस सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के हमारी निष्ठा को पहले देंगे। यह कह करके रोएगा, हरिनाम करते समय ये कह सोचो और रो, हम ही अपराधी जान, मैं अपराधी हूं, सदा दंड दुर्लभ, समस्त प्रकार के सारे अवगुण ये सब हमारे अंदर में भरे पड़े हैं। भजन करने में, नाम करने में इच्छा नहीं होती, हरि कथा श्रवण में रुचि नहीं होती, उसमें प्रतिष्ठित होने की इच्छा नहीं होती, वैष्णव की सेवा करने की रुचि नहीं होती, भगवान की सेवा करने की रुचि नहीं होती। मैं बहुत जन्मों जन्मों का अपराधी हूँ, सहस्त्र सहस्त्र दोषे दोषी, मैं सहस्त्र सहस्त्र दोषों का दोषी। उसमें दूसरों का नहीं देखता है, वो अपना देखता है। ये नहीं देखता है जैसे इसके कारण से हमारा भजन नहीं हो रहा है, ये नहीं देखता है। हमारा भजन जो नहीं हो रहा है, इसका कारण कौन है? हो नहीं, इस चीज को समझ। द्रौपदी कह रही है, मैं जानती हूँ कि ये दुशासन हमारा चीर किस लिए हरण कर रहा है, किस लिए? हमने जो कहा कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, हमने क्यों कहा उस समय? वो समझती है, इसलिए भक्त लोग समझेंगे कि हमारे लिए ये जो भजन में बाधाएं आ रही हैं किस लिए आती हैं, वो समझता है। गोपीनाथ मम निवेदन, मेरे मंदिर में कोई गुण ही नहीं है, और हरि नाम हरे कृष्ण गोपीनाथ मम निवेदन, तुम्हारा अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है, मैं लाख दोषी हूं फिर भी तुम्हारा। ये कह करके रोए तो भजन करते करते इसलिए चित्त कहीं नहीं जाएगा, और हृदय में ये भजन करने की वासना आएगी। ये सब भजन करने के तरीके हैं, जो निम्न कोटि के भी भक्त हों जिनमें निष्ठा नहीं है, ऐसा रोए, निष्कपट होगा तो ऐसा रोए। हिम भवान उदरे पतित विषम भोरे गतिहीन गति अभिलाषी हरि तव पाठ करे शरण लयिन भये कृपा करित कर तुम्हार प्रतिज्ञा यही शरण लई भेजे तुम्हें तार उद्धार गए। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है, एक बात यदि कोई कहा कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, आप उसकी जरूर रक्षा करते हैं। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्ष, ये प्रतिज्ञा मुझे। इसलिए हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि सहस्त्र सहस्त्र गुणों का दोषी हूँ, इसलिए आपके चरण में शरण लेता हूँ, आप हमारे दोषों को क्षमा करें या दंड दें कोई बात नहीं, किंतु अपने चरण से अलग ना करें। ऐसा करता हुआ रोए और भगवान का नाम करें, ये भजन के सब तरीके हैं। कृपका से अमानित तो होगा। मानसा जी नहीं जाता। कैसे होगा? अमी चंचल मती अनुभव करता है, मेरा मन अत्यंत चंचल है। अम्मार्जा पुत्र, अम्मार्जा पुत्र दूसरों को भी मर्यादा नहीं देता और मर्यादा से अधिक बढ़ जाता है। मर्यादा समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए किसी भी स्थिति में वैष्णव की को अपमान न करे, उनसे अधिक कठोर बात न करे, उनको मारे नहीं, उनको दंड नहीं दे, ये सब अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए यदि भजन करने वाला कोई, इसलिए मर्यादा से बाहर मत जाओ। असूया अग्रसा औसता, ये सब चीजें हमारे अंदर में हैं, विचार करके देखो, इसलिए भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रही है, निष्ठा नहीं हो रही, ये सब कारण है। हरिनाम करते समय आंखों में आंसू नहीं आते, गदगद नहीं होता, क्यों? किसी सब कारणों से सब समय दूसरों के प्रति असूया रखती है। दूसरों का दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देखते, इसलिए पहले अपना दोष देखना सीखो। जिस बात से हमें कष्ट होता है दूसरों के साथ में, वैसा करने से उनको भी कष्ट होता है, इस चीज को समझो। यदि हमारी निंदा हो तो हमें दुख होता है, तो दूसरों को भी उससे क्लेश होगा। अच्छा, जो भजन परायण है, एक आदमी सब प्रकार से भजन परायण है, उसके पास मान लो कुछ रुपया है, यदि किसी ने चुरा दिया तो उसके लिए वो चिंतित होगा कि नहीं? चिंतित होगा कि नहीं? यदि भजन पारण नहीं है तो उसी के लिए मरेगा, शत्रुता छानेगा, और नहीं तो धनुर्धर नथियाना, रामानुज का शिष्य धनुर्धर, उसके स्त्री के सारे गहने ले गए सोने के, उसके सारी संपत्ति ले ली, और उसकी स्त्री सोई रही, देखा जी इधर का ले गया, इधर का इसको भी ले जाए, तो इधर से करवट फिरी, तत्ने में वो समझे कि जग गई तो छोड़ करके चले गए, तो वो खेद कर रही है कि क्यों इसको क्यों नहीं ले गए। और उसका पति आया तो बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जग क्यों गई, इसको भी जरा हाथ पढ़ा देती, और हमें क्या लगोटी के लिए लड़ते हैं। इस सब विचार करके देखो और भजन करो। मान ली कि कोई ले गया तो ये सोचेगा जैसे हमारा अच्छा हुआ, यही हमारा अनर्थ था, इसमें हमारा भजन इसकी चिंता करता तो अच्छा हो गया, भगवान ने व्यवस्था करके ये सब हटा दिया। इस तरह से रहते हुए भजन करें, लाख संपत्ति आने पर भी चित्त आनंदित नहीं होगा, और लाख हमारा सब कुछ सर्वस्व अपहरण कर ले तभी उसको रत्ती मत, तभी उसकी भक्ति नहीं कम होती, उसका चित्त विचलित नहीं होता है। वो महात्मा लोग उत्तम महात्मा है भक्त। दुर्योधन ने विदुर से कहा, हमारे पत्ते में खाते हो किया हुआ और उसमें छेद करता है, तू पांडवों का भलाई सोचता है, मैं तुम्हारा ये पद ले लूंगा। और ये सुनते ही भक्त झट, ये तो आपकी बड़ी भारी कृपा हुई भगवान की, बड़े खुश हो गए और अपना वो मुकुट और पद और धनुष बाण और अपना सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो चाचा जी कहते रहे, पैरों में गिरते रहे, वो छोड़ करके चले गए, और उनके जाते ही इनका घर का विनाश हुआ। उनको तो एक बहाना चाहिए घर संसार छोड़ने का। बल्लभाचार्य जी थे, स्त्री से कहा कि भाई मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, 80 वर्ष की उम्र हो गई, अब तो मुझे आदेश, और वो आदेश नहीं देती। एक दिन घर में आग लगा लिया और चादर उड़ करके सो लिए, सो रहे थे और घर में अब आग लगी, अब मरे, उसकी स्त्री आई, अरे घर से निकलिए, अभी आग लग गई है घर में, और जल्दी से चादर उठा दी और उनको उठाया, हैं आग लगी है घर में, घर से बाहर जाना होगा, हाँ हाँ जरूर, अभी अभी निकलना है, बस घर से निकल करके चले। तो कहाँ जा रहे हैं? तो वाराणसी, घर से निकल करके, घर में आग लगी है, मैं नहीं रहूंगा, तुमने आदेश दे दिया, अब जाकर तुम्हें संन्यास ले लूंगा, और रोती बिलबिलाती रही, घर नहीं है, वो तो बहाना ढूंढते हैं मत। और वहाँ गए गंगा जी में खड़े होकर के और प्रभु को स्मरण कर रहे थे, इतने में मृत्यु आएगी, बस भगवत धाम में पधार गए। ऐसे भक्त लोग बहाना खोजते हैं, कहीं थोड़ा सा आ जाए इस सब को छोड़ दे, और जो भक्त नहीं है उसी में उलझे रहेंगे। इनको आप लोग पढ़ेंगे, आचरण करेंगे, कितना बजे? 7। मस्तके अंजल गांधी, एक दुजन कांधी दुष्ट, एक दुष्ट जन कांधी निष्कर्त धन्य मुक्त स्वरे पुकारि पुकारि कहे उहे देव दयामय दाक्षिण्य प्रकाशी अतः पर कृपा दृष्टि एक बार करो निसिंचन तभी एक जनेर प्राण। हाथ जोड़ करके हरिनाम करते समय में, भगवान की कथा सुनते समय में हाथ जोड़ करके यहाँ पर रख करके, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, मैं बहुत ही दुष्ट हूँ। इस कपट दैन्य के साथ में प्रभु को पुकार पुकार करके है, ओ दया में आप हमारे ऊपर में प्रसन्न होइए, एक बार दृष्टि आप त्रिवार दृष्टि आप हम पर करें और हमारे समक्ष अनर्थ दूर होकर के मैं शुद्ध रूप से आपका भजन कर सकूं। मई प्रसाद मधुरई कटाक्ष वंशी निनादान चरई विधे तयी प्रसन्न कि महा अपरई न त्वया प्रसन्ने कि महा अपरई मधुर कटाक्ष वंशी निनादेर सह हमा के प्रसाद करी तव पाद पदे ल प्रसन्न हिले तुम अन्य प्रसन्न। यदि हे प्रभु आप हमारे ऊपर में प्रसन्न है तो जगत अप्रसन्न होकर के हमारा क्या कर लेगा, और यदि आप प्रसन्न नहीं है तो जगत प्रसन्न होकर के हमारा क्या कर लेगा, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूं, इसलिए हे प्रभु आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो। इस प्रकार से निष्ठा के साथ सही भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम करो, थोड़े दिनों में ही निष्ठा भक्ति उत्पन्न होगी, चित्त स्थिर हो जाएगा, अनर्थ कंस दूर होते चलेंगे। इस प्रकार से आप लोग भजन में आज ही करें वंशा कल्पुर्भ्य।